संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन विचरे हमारे ध्यान। समय सार परमागम की 144वीं गाथा चलानी है। 144वीं गाथा इसलिए नहीं चलाई जा रही है कि वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण गाथा है, बल्कि अपन ने समय सार की पहली गाथा से प्रवचन करना आरंभ किया है और उससे क्रम से आते आते जो अपना शिविर हुआ था ना अक्टूबर का, उसमें 143वीं गाथा और उसके ऊपर आए हुए कलशों पर पूरा व्याख्यान हो चुका था। अब उसी क्रम में ये गाथा आई है, इसलिए ये उसी क्रम से प्राप्त गाथा है। ये तो हमारा सद्भाग्य है कि इस अवसर पर, इस शिविर के अवसर पर ये गाथा का सहज ही संयोग मिला है। इसकी जो उत्थानिका दी है उसे हम कर्ता कर्म के अधिकार का उपसंहार भी कह सकते हैं और इस गाथा की उत्थानिका भी कह सकते हैं। लिखा है ना, पक्षातिक्रांत एव समय सार इति अवतिष्ठते। पक्षातिक्रांत आत्मा ही समय सार है, यह सुनिश्चित हो गया। इति अवतिष्ठते, ये जो शब्द है ना, इस बात को बताता है कि यह नक्की हो गया। इति अवतिष्ठते, तो ये उपसंहार का वाक्य लगता है कि उनकी जो टीका थी उस टीका के बाद कलश लिखा और कलश के बाद में जी उपसंहार का वाक्य है। और गाथा भी समझ लो पूरे कर्ता कर्म अधिकार के उपसंहार की गाथा है, इसलिए उसका की उत्थान का भी उपसंहार के रूप में ही बनाई गई है। ये पक्षातिक्रांत, देखो शुरू शुरू में जब प्रतिज्ञा की थी तो ये कहा था कि मैं एकत्व भक्त भगवान आत्मा को समझाऊंगा, है ना। और फिर बीच बीच में ऐसा कहा कि यह शुद्ध भाव है, एवं भणंती शुद्धम। फिर कहा कि यह ज्ञायक भाव है। तो जब जब ये बात आई तब तब मैंने वहां आपके प्रवचनों में इस बात को स्पष्ट कहा था, इस प्रश्न को उठा करके कि कहा तो ये है कि जो हम एकत्व भक्त भगवान आत्मा को समझाएंगे, फिर एक ज्ञायक भाव की बात क्यों करने लग गए, ये फिर वो बात क्यों करने लग गए। ऐसा मैं यहां फिर प्रश्न उठाता हूं कि पक्षातिक्रांत समय सार है ये नक्की हुआ क्यों कहते हैं। तुमने तो ये बताया था कि हम तुम्हारे लिए वो बताएंगे क्या, एकत्व भक्त आत्मा को समझाएंगे। तो ये कहते एकत्व भक्त भगवान आत्मा निश्चित हुआ, ये बताना चाहिए था। तो इसके पीछे 20 कलश आए थे और उसके पीछे जो गाथाएं आई थी उसमें ये कहा था कि विविध नयों से भगवान आत्मा को विविध रूप से कहा जाता है, लेकिन यदि अपर पक्ष के नय को की उपेक्षा करें तो ये जो नय एक नय है वो एकांत कहलाता है। इसलिए प्रमेय कमल मार्तंड में नय की परिभाषा दी है तो उसमें ये शब्द डाला है अनिराकृत प्रतिपक्षा, कि जो प्रतिपक्ष का निराकरण नहीं करे और अपनी बात कहे उसे नय कहते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कहे चुप रहे। तो वो कहते हैं कि ये तो वो नए पक्ष कहलाते हैं वे सब, और भगवान आत्मा नए पक्षातिक्रांत है, माने नए पक्षों से पकड़ में नहीं आता। नए पक्षातिक्रांत माने अनुभव से पकड़ में आने वाला पदार्थ है। और जैसा कि वहां कहा था, एक कहे मैं नित्य, दूसरा कहे मैं अनित्य हूं, लेकिन तत्ववेदी तो ये जानते हैं कि भगवान आत्मा तो जो है सो है, इन विकल्पों से पार है, ना वो नित्य है ना वो अनित्य है। वास्तव में ये नित्य अनित्य का निषेध नहीं है, नित्य अनित्य संबंधी विकल्पों का निषेध है और वस्तु तो जैसी है वैसी है। तो वो कहते हैं कि इससे नक्की हो गया कि पक्षातिक्रांत भगवान आत्मा है आत्मा भगवान, भगवान आत्मा पक्षाति क्रांत है, ये बात सिद्ध हो गई। अब इस गाथा में, इस गाथा को ज्यादा महत्व इसकी टीका से मिल गया। ये टीका में जो आत्मानुभव प्राप्त करने की जो विधि बताई है ना, टोडामल जी वगैरह ने भी उसी को अपनाया, उसकी वजह से इतना अधिक इस महत्वपूर्ण ये गाथा हो गई। वो कहते हैं कि सम्यक दर्शन नानम एसो लह दित्य नवर विदेशम सभ्य नय पक्ष रह दो भण दो जोशो समय सारो। देखो सभ्य नय पक्ष रह दो, संपूर्ण नए पक्ष से रहित जो कहा गया है, भण दो माने कहा गया है, सो समय सारो, जो सब नए पक्ष रह दो भण दो, जो सब नए पक्षों से रहित कहा गया है वह समय सार है। और ये तनिका में लिख दिया और ऊपर कहा कि उसी का नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन नानम एसो लह दित्य नवरी भवि देशम माने उसको सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। ऊपर की पंक्ति को आचार्य अमृतचंद्र ने बस मात्र दो पंक्तियों में, डेढ़ पंक्ति में ही निपटा दिया और नीचे की पंक्ति पर पूरी टीका केंद्रित की। देखो अपन पढ़ते हैं गीता को, देखो यहां आत्मा को ही, समयसार को ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कहा जा रहा है। दोनों को एक ही वस्तु बताया जा रहा है, इसकी क्या अपेक्षा है यह सब टीका में स्पष्ट किया है। आत्मख्याति टीका में इस गाथा का भाव जो स्पष्ट किया गया है वो इस प्रकार है। वास्तव में तो समस्त नए पक्षों के द्वारा खंडित न होने से जिसका समस्त विकल्पों का व्यापार रुक गया है, ऐसा समयसार रूप भगवान आत्मा ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नाम पाता है। तात्पर्य यह है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान समय स्वरूप रूप आत्मा से अलग नहीं है, अभिन्न ही है। गुरुदेव को ऐसी भाषा में जब अर्थ करते थे वो ये कहते थे कि समयसार शुद्ध है, बुद्ध है, एक है, पर कौन है कि जेने जाना तेने, जिसने उसे जाना है उसके लिए है कि इसके लिए आत्मा शुद्ध बुद्ध है और इसके लिए नहीं है, तो किसी व्यक्ति की अपेक्षा तुम बात क्यों करते हो? तुम तो वस्तु की अपेक्षा बात करो ना कि ये कैसा है। ये रूमाल कैसा है तो रूमाल के बारे में बताओ ना कि मेरे लिए बहुत अच्छा है और तुम्हारे लिए बुरा है। तुम्हारे लिए और मेरे लिए कैसा है ये बात क्यों करते हो? ये समयसार बहुत अच्छा ग्रंथ है, जैन दर्शन का सिरमौर है, इसके बारे में कहो ना। तो ये कहो कि प्राथमिक भूमिका वालों के लिए तो, उच्च भूमिका वालों के लिए तो अमृत है, लेकिन प्राथमिक भूमिका वालों के लिए किसी काम का नहीं है। तो तुम इसको, इतनी बढ़िया चीज को किसी बहाने किसी काम का नहीं है ऐसा क्यों कहते हो? समझे ना। तो वो ये कहते हैं, गुरुदेव बोलते थे कि कौन है कि जेने जाना तेने, यानी उसको जानने का, उसका लाभ उसके जानने वाले को ही प्राप्त होगा। क्या कि आत्मा तो है वैसे ही सबका है, उसमें दो फर्क नहीं है, शुद्ध बुद्ध है, लेकिन उसका लाभ किसको प्राप्त होगा कि जो जानेगा उसको प्राप्त होगा। इसलिए वो कहते हैं कि जाना हुआ आत्मा ही समयसार है। ये आसन है, इसलिए कहते हैं आत्मा को जाना वही सम्यक दर्शन है, वही सम्यक ज्ञान है। इसलिए आत्मा के अलावा सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कुछ नहीं है, बस एक आत्मा को जानो, सम्यक दर्शन को जानने के पीछे मत पड़ो। अभी अन्ना जी ने दोपहर की क्लास में सुबह लेते सब कभी ये बात कही थी ना, अभी सम्यक दर्शन नहीं है तो इतनी आकुलता काय के लिए हो रही है? तू तो है ना, तू आत्मा है क्या सम्यक दर्शन है? कि मैं आत्मा तो हूं लेकिन समय दर्शन हो जाए तो और अच्छा रहे। तो मैंने अभी आत्मा उतना अच्छा नहीं है, पर इसी का नाम मिथ्या दर्शन है, इसी का नाम कमी है। और तुम ये कहे कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अपने आप में परिपूर्ण तत्व हूं। तो फिर वो कहते अब इस गाथा में मालूम क्या कह रहे हैं कि यही तो समय दर्शन है, और समय दर्शन इसके अलावा तेरे को क्या होना है, क्या तेरे अंदर में ये भाव खत्म हो गया, माने पर्याय में से हम बुद्धि हट गई और द्रव्य स्वभाव में हम बुद्धि आ गई, इसी का नाम तो समय दर्शन है। और इससे अलावा तुझे कौन सा समय दर्शन होगा जिसकी तुम अपेक्षा करता है ना। वो रे प्रभु तू सब बातें पूरा पर की आस करे क्यों मूर्ख, तू काई बातें अधूरा। तू किस बात में कम है, तू पर की आशा क्यों करता है, ख्याल में है ना। तो इस तरह से वो ये कहना चाहते हैं कि सम्यक दर्शन कोई अलग है, सम्यक ज्ञान अलग है, समय सार अलग है, पक्षातिक्रांत अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक वस्तु के ही नाम हैं। कहने का मतलब यह है, कोई ये कहे ज्ञानी जन भी तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को चाहते हैं, तो वो कहते हैं भैया उनका चाहना आत्मा का चाहना ही है। जब सम्यक दर्शन की बात करें चाहे ज्ञान की बात करें, तो वास्तव में सम्यक दर्शन आत्मा में अपनापन का नाम है, इसलिए उनने आत्मा हो कोई चाहा। सम्यक दर्शन भले ही मुंह से निकल रहा है लेकिन अंदर से वे आत्मा की ही चाह है, जो 15वें कलश में और 16वीं गाथा में बात कही है कि एक आत्मा का ही ध्यान करना चाहिए, उपासना करनी चाहिए, चाहे हम साध्य भाव से करें चाहे साधक भाव से। और अगली गाथा में कहते दर्शन ज्ञान चात्र का सेवन करना चाहिए, कि दर्शन ज्ञान चात्र का सेवन और आत्मा की उपासना दोनों का एक ही अर्थ है। जिसकी उपासना की जा रही है उसकी तरफ से बात करें तो आत्मा की उपासना कहते हैं, और उस उपासना का क्या है, वो उपासना हुई तो क्या हुआ, कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हुआ। जब उपासना की तरफ से बात करते हैं तो उसका नाम सम्यक दर्शन होता है। और कोई ऐसी तो भक्ति करते हो ऊपर जाकर के भगवान के सामने बैठ के, ऐसी उपासना थोड़ी भगवान आत्मा की होती है। भगवान आत्मा में अपनापन आया अनुभूत आत्मानुभूति पूर्वक, आप समझे ना। अभी उसकी बात विस्तार से कहेंगे कि आत्मानुभूति पूर्वक शब्द क्यों लगाना पड़ता है, लेकिन अभी वास्तव में तो अपने आत्मा में अपनापन का नाम ही सम्यक दर्शन है। अब ये आत्मा का अपनापन आगम के आधार पर गुरुमुख से सुनकर तरक्की कसौटी पर कस कर के भी आ जाता है, ये मानने लगता है कि मैं पर नहीं हूं आत्मा हूं, ख्याल में है ना। अभी समझ समझ की रट लगाता था, अब ये व्याख्यान सुन लेगा तो फिर बाद में चिंतन करके ये नक्की कर लेगा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तो भगवान आत्मा हूं। अब सुना ना, तो गलत कर लेगा ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन ऐसा इसे भी हम अपनापन कहते हैं, तो इसे कोई भ्रम से ना मान ले क्या कि मुझे सम्मा दर्शन हो गया। इसके लिए कहते हैं आत्मानुभूति पूर्वक। एक दफे वो भगवान आत्मा अपने ज्ञान का गे बनना चाहिए सीधा डायरेक्ट, ये बात हमारी सुनी सुनाई नहीं होनी चाहिए, ये पढ़ी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, वो आत्मानुभूति पूर्वक होना चाहिए। और ये नियम भारतीय कानून को भी मान्य है। आप जानते हैं अदालत में जितने भी फैसले होते हैं वो सब गवाह के आधार पर होते हैं। क्या मतलब कि जो आदमी शिकायत लेके आया है ना तो जज उसकी बात को सत्य मानता है, और जो जिसकी शिकायत की जा रही है ना उसकी बात को सत्य मानता है, बल्कि जो बीच का गवाह होता है उसके आधार पर फैसला होता है। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जिसने शिकायत की है वो पांचवां गुणस्थान वाला हो अपने धर्म के हिसाब से, है ना, और जिसकी शिकायत की है वो भी पांचवें गुणस्थान वाला हो और गवाही में चालीस भी हो। अदालत क्या कह रही बोलो, उससे तो उसने एक पक्ष मान लिया पार्टी, कह रही तो पार्टी है इसलिए बात मत करो, और वो दूसरे वाले को भी एक पक्ष मान लिया। अब वो जो उसे निष्पक्ष माना पक्षातिक्रांत, वो गवाही को साक्षी कहते हैं, पक्षातिक्रांत कहते हैं, कहते हैं ना। पर अपने भगवान को भी भगवान पंडित भागचंद जी ने जगत साक्षी कहा है, जगत साक्षी ब्रह्मान, ये जगत का साक्षी है। वो दो बात कहते हैं, तो कितनी मार्मिक बात है भारतीय कानून और जैन दर्शन। वो कहते हैं कि एक तो जो गवाह है उसमें निष्पक्ष होना चाहिए। अब ये तो भाषा हो गई, लेकिन अब निष्पक्ष किसको माने, तो अपने तो धर्म में तो कह देंगे जो वीतरागी है, उसके नीचे वालों को भी मान लेते हैं निष्पक्ष, जैसे छठवें गुणस्थान वाले मुनिराजों को, क्यों, क्योंकि अंशतः वीतरागी है, समझे ना। ऐसा आए ना, फिर चौथे गुणस्थान तक वालों को मान लेते हैं, क्यों, उन्हें भी हमने अंशतः वीतरागी मान लिया। अब उस लौकिक अदालत में कैसे वीतरागी बनने का निर्णय करें, तो उन्होंने कह दिया कि एक तो जिसकी शिकायत की है उस पार्टी से वो संबंधित नहीं होना चाहिए, उसके परिवार का नहीं होना चाहिए, उसका भाई नहीं होना चाहिए, ख्याल नहीं ना, बने बस एक तो नहीं बना, और एक दूसरी पार्टी का भी कोई नहीं होना चाहिए, पर बिल्कुल तीसरा व्यक्ति होना चाहिए जो उनसे किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं हो। इसलिए वकील लोग किसी न किसी प्रकार से पहले तो ये कोशिश करते हैं कि उस आदमी की गवाही झूठी मान ली जाए, इसके लिए उसे जिसके पक्ष में उसने गवाही दी है उसे उसकी पार्टी का किसी न किसी तरह सिद्ध कर दें, ख्याल में, ये कोशिश करते हैं वो। तो एक तो ये है कि वो उन दो में से किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए, निष्पक्षता का आधार, और दूसरा अपने यहां सर्वज्ञ भगवान माने हैं, वीतरागी और सर्वज्ञ होना चाहिए ना प्रमाणिकता के लिए, अपने भगवान सर्वज्ञ हैं और फिर बाकी के लोग जो प्रमाणिक हैं आचार्य हमारे ज्ञानी पंडित, तो वो उनकी वाणी के अनुसार बोलते हैं इसलिए प्रमाणिक हैं, शास्त्र भी इसलिए प्रमाणिक हैं कि उनकी वाणी के अनुसार बोलते हैं, स्वयं से प्रमाणिक नहीं है, अपने हाथ ऐसी प्रमाणिकता ली। अब वहां कैसे माने कि भाई वो उस केस का पूरा जानकार होना चाहिए, माने हत्या हुई है तो उसे वो चश्मदीद गवाह होना चाहिए, माने उसने अपनी आंख से उसे देखा हो, हाँ चश्मदीद गवाह होना चाहिए, ये इसको उन्होंने जानकार मान लिया। क्या कर दी बताइए, आप बताओ कोई दूसरा रास्ता हो तो अपन संशोधन करवाए कानून में, हमारे पास भी कोई दूसरा उपाय नहीं है, हमें यही मान के चलना पड़ेगा। तो अब क्या होता है, मान लीजिए कि अभी बहुत उदाहरण देता हूं, प्रसिद्ध उदाहरण आपकी समझ में आएगा कि गांधी जी की हत्या किसने की, बोलो कौन, ये सब जानते हैं, किसी को शंका है उसमें, कि नाथूराम गोडसे ने की, यहां का हर आदमी ने एक स्वर से ये बात निकली, किसी को इसमें विरोध है नहीं है। अब आपने किसी ने उसको हत्या करते देखा था, जब उनकी हत्या हुई थी तो तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ था, फिर भी हमारे चित्त में विकल्प भी खड़ा नहीं हुआ, इस बात की प्रमाणिकता करने के लिए हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, माने हमको वो जो अखबारों में लिखा है, किताबों में लिखा है, अपने बाप दादों से सुना है, तो वे उसके गुरु और शास्त्र हो गए, देवशास्त्र गुरु हो गए, माने उनकी वाणी के आधार पर ही हमने बिल्कुल मान लिया कि ए नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की है। देखो इसमें हमें शंका नहीं है, मान लिया हमने, ये अखबार भी रागी देसी लोगों ने लिखे थे, क्यों, और ये हमारा भगवान आत्मा ऐसा त्रिकाली ध्रुव है, ये अरहंत ने कहा सभा में और वीतरागी संतों ने कहा और उन वीतरागता के पोषक शास्त्रों में लिखा, उसमें हमें शंका होती है, तो हम कैसे किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं, बोलिए, आखिर लोक में भी किसी निर्णय पे पहुंचने के लिए कहीं तो अटकना पड़ता है। कभी कभी तो मैं बहुत कठोर भाषा में बात करता हूं कि हम मैं भारिल हूं, आप पाट नहीं है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, रमेश जी बाज माजल हैं, ये कैसे जाना? व्हाट इज द प्रूफ, क्या प्रमाण है इस बात का? तो हम बड़े गौरव के साथ कहते हैं हमारे पिताजी ने बताया। और पिताजी को कैसे मालूम था? तो उनके पिताजी ने बताया था। क्यों? अब वे पिताजी पिताजी के पिताजी सात विष्णु में पारंगत हो सकते हैं, महान रागदेशी हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, और काला अक्षर भैंस बराबर हो, हैं? ऐसे भी हो सकते हैं। पर हमें आज तक शंका नहीं हुई कि हम भारिल हैं कि नहीं है। आखिर हमने उसको लौकिक दृष्टि से प्रमाण माना ना, वो हमारे चित्त में बैठा कि नहीं बैठा? भाई धर्म के मामले में, देशाधिकार के मामले में हम गड़बड़ करते हैं। तो अब मैं कहता हूं कि ये मानने के बाद भी देखो, ये स्थापना हुई देवसास गुरु की। अब जरा इसमें जो ये है ना आत्मानुभूति पूर्वक, इसका अर्थ कर रहा हूं मैं कि वहां ये सारा देश कह रहा है, सारा देश मान रहा है कि गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने माना, लेकिन वो मजिस्ट्रेट जिसमें नाथूराम गोडसे पर केस चल रहा था महात्मा गांधी को मारने का, उसके पास कोई गवाह पहुंचा और उसने कहा कि तुम्हें भाई बोलो किसने मारा महात्मा गांधी को, कि नाथूराम गोडसे ने, कि तुमने देखा, कि हां देखा, कि कहां देखा, कि नव भारत टाइम्स में। खत्म खत्म कर, दूसरा 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 गवाह ले आप, एक सेकंड में वो जज है उसको गवाह में से हटा देगा। ऐसा ही समय सार कह रहा है कि तुमने भगवान आत्मा शुद्ध बुद्ध निरंजन है निराकार है, कि तुमने देखा, कि हां देखा, कहां कि समय सार में 144वीं गाथा में, कि जाओ छुट्टी तुम्हारी, बस कह रहे ना हम समय सार में देखा नहीं माने। देखो उसको सारा लोक मान रहा है और अपने जैन धर्म में भी व्यवहार से मानना माना है, और मानना जरूरी है ये भी अभी बताएंगे कितना आवश्यक है। ये अदालत के केस के हिसाब से डिसीजन नहीं होगा, नाथूराम गोडसे के पुतले नहीं लगाए जा सकते हैं चौराहे चौराहे पे, मतलब अदालत चाहे से बरी भी कर देती तो ये लोक की अदालत उसे बरी नहीं करती। फिर वो कहता है कि अभी मैंने तो नहीं देखा था लेकिन मेरे पिताजी ने देखा था, वे उसी वक्त जब गांधी जी की प्रार्थना में मौजूद थे और जब उसने गोली चलाई गांधी जी को मारा तो मेरे पिताजी ने देखा था। तो वो कहता है जज कि पिताजी को अदालत में पेश करो, कि पिताजी ने मेरे से कहा हो, मैं कह रहा हूं कि नहीं ये नहीं चलेगा, माने अब गुरु की वाणी नहीं चलेगी, मतलब ये शास्त्र भी नहीं चलेगा, अखबार भी नहीं चलेगा, समझ गए, और गुरु भी नहीं चलेगा, आप समझ गए यही बात कह रहे, लेकिन वो चलेगा जिसने अपनी आंख से देखा। वो कैसा है मिथ्या दृष्टि संबंध उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो कहता मैंने अपनी आंख से देखा तो वो चलेगा। अब जब वो कहते हैं कि साहब वो तो पलंग पे पड़े हैं और डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है, वे तो अदालत में आ नहीं सकते, तो वो कहता कोई बात नहीं है, अदालत आपके घर आएगी और उनसे डायरेक्ट पूछेगी और तब मानेगी, लेकिन तुम वो तुम्हें कहें और तुम हमें कहो ये नहीं मानेगी। आखिर एक कानून तो रखा ना मर्यादा, अब आपको वहां क्यों रखा? अब वकील क्या करेगा? अब वकील करेगा तो एक कोशिश करेगा कि हम ये सिद्ध कर दें कि इनकी आंख में डिफेक्ट था, कि आप इतनी दूर थे, तब वो पूछेगा साहब आपने देखा था तब आप कितनी दूर थे, यही होंगे 8-10 गज दूर है ना, तो दिन था कि रात, अंधेरा भी सिद्ध हो जाए तो 10 फुट दूर से अंधेरे में कोई आदमी नहीं पहचान सकता किसी को, एकदम नए आदमी को, क्यों गोली मारते वाले को, समय सही हो जाए, पर्याप्त प्रकाशता सिद्ध हो जाए, تو آپ کو چشمہ لگتا تھا کہ نہیں لگتا تھا؟ چشمہ لگتا تھا تو آپ نے اس وقت چشمہ لگایا تھا کہ نہیں لگایا تھا؟ اوکے, ہاں چشمہ لگتا تھا اور میں نے لگایا تھا, تو آپ ابھی اتنی دور ایسے سمے میں کھڑے کر کے بولیں گے انہیں پہچانو کیوں؟ اور پھر وہ نہیں پہچان پاتا کہ تمہاری دشٹی کمزور تھی, یہ تم کسی دوسرے آدمی کو تم نے دیکھا ہوگا اور تم نے اسے ناتھورام گوڑ سے سمجھ لیا ایک سے کپڑے پہن کر. ہم بہت دفعہ چہرے سے نہیں پہچانتے ہیں, کپڑوں سے بھی پہچانتے ہیں. کیا ایک سے آدمی دو کپڑے پہنتے ہیں, دو آدمی ایک سے, تو ہمیں بھرم ہو جاتا ہے کہ یہ وہی ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں یہ بات سدھ ہو جائے دیکھنے کہ اس نے ڈائریکٹ بالکل دیکھا ہے تو ہی وہ پرمان مانی جاتی ہے. ایسے ہی یہ کہتے آتما کو, آتما نے اندریوں کے بنا, چشمہ کے بنا, آنکھ کے بنا سیدھا آتما کو دیکھا جانا ہو تب وہ اس کو ہم سمنا درشن بولیں گے. آتمان بھوتی پوروک اپنے ترکالی درو بھگوان آتما کو جان کر اور اپنا پن ہونا, اس کا نام سمنا درشن ہے. اب خیال میں نہیں, اب یہ نہیں ہے کہ ابھی ہم دیکھ سکتے کہ نہیں دیکھ. اب وہ بڈھے جو آدمی تھا نا, جو گھر پہ ہے عدالت جس کے گھر آئی ہے, ابھی اس کو بالکل اندھا ہو, کچھ نہیں دکھتا ہو, تو بھی اس نے کہا کہ میں نے دیکھا تھا, مان لیا جائے گا کیونکہ اس وقت دکھتا تھا. ابھی دکھنے سے مطلب نہیں ہے. تو آتمانوبھوتی الگ ہو گئی رمیش چند جی, ابھی آتمانوبھوتی کا کال نہیں ہے, یدھ کے کال میں لگ رہا ہے, تو بھی وہ اپنا آتما میں اپنا پن ہے تو وہ سمنا درشن قائم ہے. پھر سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ کیوں کہ اس کی ایسی اتپتی ہوئی تھی آتمانوبھوتی پوروک. ایک بات میں اور اس بارے میں بہت باریکی سے کہتا ہوں کہ اکیلا سمنا درشن کی بات نہیں ہے, سمیہ گیان کی بھی, کیونکہ یہاں دونوں باتیں لی نا, کہ گیان میں بھی لفظی گیان بولو اسے, نہیں جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتا میں تو اپیوگ میں بھی کہتا ہوں, لیکن لفظی گیان کی پکی بات کرو کہ لفظی گیان میں 24 گھنٹے وہ بھگوان آتما جاننے میں آتا رہتا ہے. لفظی گیان پرگٹ پریائے کا نام ہے بھائی صاحب, لفظی گیان سوبھاو کا نام نہیں ہے. سوبھاو کی اپیکشا تو سارا لوکا لوک کو جاننے کی کھمتا ہے, اور لبدی گیان میں اسے سواتما کے بولتے ہیں وہ سوانبھوتیابرن کرم کا چھوپسم ہے. سوانبھوتیابرن کرم جانتے ہو, 148 پرکتیوں میں کون سی پرکتی ہے؟ ہے کوئی ہے کسی شاستر میں؟ یہ ہے کلشٹیکا میں ہے. اب اسنکھ بھید ہیں کرم کے, 148 اور 8 یہ تو بہت استھول روپ سے ورگیکرن ہے. ہم اس رومال کو جانتے ہیں نا, تو ہمیں رومالا ورن کرم کا چھ اپسم ہے اس لیے جانتے ہیں. کیا کہ رومالا ورن کرم کا بھی ہو سکتا ہے؟ ارے جو پدارتھ ہے جس کا گیان ہمیں ہے اس کو آورت کرنے والا جو کرم, اس کا نام تداورن, اسے تداورن تداورن بولتے ہیں نا, تو تداورن کومن شبد ہے, سرونام ہے, پھر اسے سنجا بنائیں گے تو جس کا ہوگا اس کو بولنا پڑے گا سوانبھوتیابرن کرم کے سے اسم سے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں یہاں پر اس بات کو بتائیں گے وہ. ایک بات اور میں مرم کی بتا دوں ابھی, پھر اپن پڑھتے ہیں گاتھا میں تو بہت اسپشٹ شبدوں میں لکھا ہے, سب نئے پکھ رہے تو بھنے دو جو سو سمے سارو. اب اس نیچے کی پنکتی پر سارا اپنی محنت چلے گی, اوپر کی پنکتی کا ارتھ ہو گیا کہ سب نئے پکش رہے تو نئے پکش تو شرد گیان میں ہوتا ہے. نئے جو ہیں شرد گیان کے بھیدوں کو نئے کہتے, شرد وکلپا نیا, نئےوں کی پریبھاشا شرد گیان کے بھیدوں کو نئے کہتے ہیں. تو یہاں تو اکیلے شرد گیان کی بات ہے, اور ٹیکا میں پھر متی گیان اور شدھ گیان دونوں کو آتم سنمکھ کریں ایسا لکھا ہے, گاتا میں نہیں ہے متی گیان. شدھ گیان بھی دو دفعے ہے, ابھی وستار میں جاؤں گا دھیرے دھیرے, ابھی میں تھوڑا چاروں طرف گھوم رہا ہوں, उस चक्रव्यूह का भेदन करने के पहले, उसमें प्रवेश करने के पहले। देखो वास्तव में दो ज्ञान होते ही नहीं है, एक ज्ञान नाम का गुण है और उसकी एक समय में एक ही पर्याय होती है, और जब वो पूर्ण शुद्ध पर्याय होती है तो एक ही होती है ना, उसका नाम केवल ज्ञान है। अब फिर ये जो चार ज्ञान हैं, सेवसम ज्ञान, मत शुद्ध अवधि मन पर्याय, और जिनको तत्वा सूत्र में कहा कि एक साथ अधिक से अधिक कितने ज्ञान हो सकते हैं, हैं? तो चार कहा वो ना, वो वास्तव में चार ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय में चार प्रकार की योग्यताएं हैं। योग्यताएं माने तदावरण कर्म के क्षेत्र रूप योग्यताएं। कैसी हैं? कि उसको पांच इंद्रियों और मन के निमित्त पूर्वक जानने की जो क्षमता है, उस योग्यता को मति ज्ञान कहते हैं, उसी ज्ञान पर्याय में। और उसी ज्ञान पर्याय में नए विकल्पों से जानने की जो योग्यता है, उसी को बोलते हैं श्रुत ज्ञान। और उसी पर्याय में जो अवधि दिव्य क्षेत्र काल भाव की अवधि पूर्वक है ना, पुद्गल को एक देश प्रत्यक्ष जानने की योग्यता है, उसका नाम है अवधि ज्ञान। और उसी पर्याय में मन दूसरे के मन में स्थित विकल्प जो पौद्गलिक है, उसको जानने की जो योग्यता है, उसका नाम है मन पर्याय ज्ञान। तो एक ज्ञान पर्याय में चार प्रकार की योग्यताएं हैं, उन्हें हमने शास्त्रीय भाषा में चार ज्ञान नाम दे दिया। यही कुछ सूत्र हैं जिनके विशिष्ट अर्थ हैं, जो 10-5 सूत्र में कभी कभी आपसे चर्चा करता रहता हूं, उन्हीं की वजह से मुझे तत्वार सूत्र का अनुशीलन लिखने का विकल्प है, कि उनका मैं अर्थ स्पष्ट करना चाहता हूं। मेरी दृष्टि में समाज में बहुत लोग उसके अर्थ को सही नहीं समझते। इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम ऐसा ही सूत्र है, परस्पर गुरु जीवानाम ये सूत्र है, और बहुत हैं ऐसे ही जिन पर विशिष्ट, अकेले उन पर ही लिखो तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए पूरा उस पर लिखो, उसके बीच में वो सब बातें आ जाएंगी। तो ये चार ज्ञान हो गए ना, तो इसलिए इन्होंने जब सन्मुख करने की बात आई तो दो जो ज्ञान प्रगत हैं उन ज्ञानों को आत्मसन्मुख करने की प्रक्रिया बताई। मेरा मतलब समझे ना, गाथा में नहीं थी फिर भी प्रक्रिया में ये नाम क्यों, दो नाम को क्यों लिया, इसलिए ये प्रक्रिया बताई। अब अपन इस टीका के उस अंश में प्रवेश करते हैं कि जिसमें उन्होंने आत्मानुभूति की प्रक्रिया को बताया है। देखो पहले श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का स्वरूप सुनिश्चित करके भली भांति समझ कर फिर आत्मा की ख्याति के लिए, प्रगट प्रसिद्धि के लिए, आत्मानुभूति के लिए, पर पदार्थों की प्रसिद्धि की हेतुभूत इंद्रियों और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लेकर आत्मसन्मुख करके जिसने मति ज्ञान तत्व को आत्मसन्मुख किया है, मति ज्ञान को आत्मोन्मुख किया है तथा किया है वो है, तथा फिर बाद में आएगा वह है आत्मा। तो मति ज्ञान को आत्मसन्मुख किया ना, ये सारे विशेषण है मति ज्ञान संबंधी है। अब सबसे पहले ये मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान को आत्मसन्मुख करने की बात तो बाद में कही, उनने पहले कहा कि शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का सुनिश्चित करके, ये जो एक तो प्रत्यय लगता है ना जिसमें करके, वो वाक्य खत्म नहीं हुआ, मतलब एक क्रिया हुई और उसके बाद दूसरी क्रिया होगी, एक क्रम बताता है ना। तो वो ये कहते हैं कि सबसे पहले तो तुझे श्रुत ज्ञान से, अब यहां मति ज्ञान को नहीं लिया, हालांकि मति ज्ञान की, मति ज्ञान माने बुद्धि, श्रुत ज्ञान माने विद्या, तो बुद्धि के बिना तो ये भी निर्णय तो होगा नहीं, लेकिन ये कहकर वे देशना लब्धि की मुख्यता करना चाहते हैं। समना दर्शन जब होता है तो वो करण लब्धि पूर्वक होता है, और करण लब्धि होती है वो देशना लब्धि पूर्वक होती है। यद्यपि प्रायोग लब्धि, विशुद्धि लब्धि और क्षयोपशम लब्धियां भी हैं, लेकिन मैं अभी दो लब्धि की बात करता हूं, सिर्फ एक देशना और एक करण लब्धि। एक विकल्पात्मक काल की लब्धि और एक निर्विकल्पक की लब्धि। तो देशना लब्धि के बिना नहीं होगा। अब वो देशना का मतलब क्या होता है, तो कहते सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आया हुआ जो तत्व ज्ञान है, वो चाहे आचार्यों के मुख से हमारे पास आया हो, चाहे ज्ञानी गुरुओं के मुख से आया हो, और चाहे शास्त्रों के माध्यम से आया हो, चाहे वो लिखित रूप से हमने प्राप्त हुआ हो और चाहे वो मौखिक रूप से प्राप्त हुआ हो। देखो इसमें भी एक मर्म की बात है, हमने लिखित रूप को गौण कर दिया और मौखिक रूप को मुख्य कर दिया। मौखिक रूप में बहुत दुर्लभता है और लिखित रूप में बहुत सुलभता है, क्या ना उनको नित्य बोधक कहा ना जनवाणी को, क्योंकि ये समय सारादि ग्रंथ और आचार्यों के सीधे आपको घर घर में 24 घंटे उपलब्ध हैं। अब कुंद कुंद का प्रवचन सुनने को तुम्हें इस भव में मिल ही नहीं सकता, कितनी दुर्लभता है। देखो हम क्या समझते हैं हमारा प्रवचन, तो कुंद कुंद का समय सार और कुंद कुंद का के मुख से सुनना, ऐसी तुलना उन दोनों की है, हमसे थोड़ी है। अब बोलो दुर्लभ कौन है सुलभ कौन है, अब अंतर समझ में आया कि नहीं। अब जो 2000 वर्ष पुराने आचार्य हो गए, उन आचार्यों तो हमारे लिए असंभव ही है ना। एक तरीके से हम एक कहकर कि सुनने से ही सम्यक दर्शन होगा, बहुत मार्मिक बात है। हम सारे आचार्यों की छुट्टी करना चाहते हैं सिर्फ छोटे से स्वार्थ के लिए कि मुझे महत्व मिले, तुम सुनेंगे तो मेरे से ही। हर एक ने अपने को ज्ञानी मान लिया और उसने ये कह दिया सुनने पढ़ने से नहीं होता है, सुनने से होता है, नियम सार में लिखा है पढ़ने से होता है। लेकिन ये समझ लेना क्या कितना बड़ा अपराध है, क्योंकि वो कितना दुर्लभ है। मान लो तुम्हारा तुम अकेले को मान लें तो तुम कितनों को कब कब उपलब्ध हो, क्यों तुम्हारी बात सुनने कौन कौन कब कब सुन सकता है, तुम किस किस को सुना सकते हो, आप समझे ना। और जिनवाणी तो कुंद कुंद से लेकर तुम्हारी तक की सबको प्रति समय उपलब्ध हो सकती है, अपने घर में रात के 2 बजे भी। तो आप उसे बहुत बड़ा प्रतिबंध लगा रहे ऐसा कह करके, अकेला सुन करके ही होगा पढ़ करके नहीं होगा, यानी पढ़ना निमित्त नहीं होगा, है तो निमित्त ही, वो होना तो अपने उपादान से है कि गुरु के मुख से सुनकर के निमित्त हो गए, चाहे शास्त्र पढ़ करके हो गए, चाहे सर्व भगवान के मुख से निमित्त सुनकर हो गए। तो सुनना कितना दुर्लभ है और पढ़ना उसकी अपेक्षा कितना आसान है, आया ना समझ आगे। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि ये जो बात लिखी कि सुनकर, ये गौण थी, पढ़कर ही मुख्य थी, जहां मेरी बात सुनने जरा। लेकिन ये इसलिए लिखना बहुत जरूरी था, उसके लिए महत्व देना जरूरी था, क्योंकि अन्यथा भगवान महावीर से लेकर और भूतबली पशुदंत और कुंद कुंद तक हमारे पास कुछ भी लिखित नहीं है। यदि हम पढ़ने से मानते अकेले, समझ गए ना, तो वे 600 साल में किसी को सम्मत दर्शन का निमित्त ही नहीं होता। इसलिए सुनना भी कितना महत्वपूर्ण है, मेरी बात सुनना। अब दोनों में से किसको महत्व कह दें और किसको नहीं दें, कभी कभी तो मैं बहुत आश्चर्य में पड़ जाता हूं। मैंने बहुत गहरा अध्ययन किया इस पर, शास्त्रों के आधार पर भी और लौकिक दृष्टि से भी, और ये अपना जो न्याय का नियम है एवं चेत एवं साध, यदि हम ऐसा नहीं मानते तो क्या क्या संकट खड़ा हो जाता। क्यों देवेंद्र जी आपकी समझ में आया क्या संकट, यदि अकेला पढ़ने को ही मानते तो भगवान महावीर से लेकर के कुंद कुंद तक, भूतबली पशुदंत तक, इसके बीच में जो सम्मत दर्शन प्राप्त करके ज्ञानी हुए हैं उनको सम्मर्शन के निमित्त नहीं, निमित्त का अभाव हो जाता, बस खत्म बात। और यदि अब पढ़कर के नहीं मानो तो पूरे पूरे क्षेत्रों में ऐसी स्थिति बन जाती है कि जब एक भी ज्ञानी कहीं दिखाई नहीं देता, तो फिर भी अभाव हो जाता है। देखो मुनि दीक्षा में कहते ना गुरु से ही दीक्षा लेनी चाहिए, कितना कठोर नियम है, लेकिन फिर भी एक रास्ता रखा है ना कि योग्य गुरु नहीं मिले निर्विक्षेत्र काल भाव में तो अनंत भगवान की मूर्ति के सामने भी आप दीक्षा ले सकते। यदि ये रास्ता नहीं रखते तो आज नग्न दिगंबर मुनि नहीं दिखते, क्योंकि एक दफे विच्छिन्न हो गए थे बस बाद में खत्म। और मान लो कोई दिखते भी और वो हमें साक्षात भ्रष्ट दिखते, हमें सच्चे दिखते ही नहीं, तो हम क्या उसके लिए बाध्य हो जाते ना, क्यों समझ रहे ना। इसलिए हरेक में ये रास्ता है, पंचम काल के अंत तक कम से कम निमित्त का अभाव तो नहीं होगा, उपादान तो है ही, सम्मा दर्शन ज्ञान पैदा करने के निमित्त सदा विद्यमान रहना ही चाहिए, और इसके लिए देव और गुरु दोनों ही अत्यंत आवश्यक हैं। किसी को दोनों हो तो बहुत ही बढ़िया है, और दोनों में से एक भी हो तो भी काम हो जाएगा। मैं नहीं समझता मैं अपनी बात जो कहना चाहता हूं कितने लोगों तक पहुंचा पाया हूं, ख्याल में है ना। फिर भी मैं और कहूंगा, मैं तो कहता ही रहूंगा, बार बार कहूंगा, गांव गांव में कहूंगा, तो धीरे धीरे लोगों तक वो बात पहुंचेंगी, अभी भी कही है। माने दोनों में से किसे ज्यादा महत्व दें यही समझ में नहीं आता, क्यों महत्व क्यों है ही नहीं ना, दोनों से होता है और दोनों से नहीं होता है। निमित्त दोनों में से कोई भी हो सकता है, दो ही हो सकते हैं, और उपादान तो हो ही नहीं सकता, उपादान की तैयारी हो तो हो गई नहीं। नियम सार में भी आया है, जब उसका प्रकरण में लिखूंगा तब विस्तार से उसमें लिखूंगा। तो एक बात यहां हुई ना कि मध्य ज्ञान और शुद्ध ज्ञान दोनों को अंदर समेटने की बात करते हैं, क्योंकि ज्ञान की एक समय की पर्याय हमारे सामने दो रूप में सामने आती है, एक मति ज्ञान रूप में और एक श्रुति ज्ञान रूप में। श्रुति ज्ञान में अकेले नए विकल्पों को लिया, और मति ज्ञान में पांच इंद्रियों के माध्यम से होने वाले ज्ञान के प्रयोग को लिया। आप कह रहे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, इनको लिया कुछ छोड़ दिया कि हाँ छोड़ दिया ना, इसलिए तो मैं कहता हूं इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम सूत्र का यह अर्थ किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और मैंने बालबोध पाठमाला भाग वीतरा विज्ञान पाठमाला भाग के एक में इंद्रिय वाला पाठ कौन से है, तीन भाग में है कि तीन में, उसमें ये बात लिखी है। क्या मतलब कि इंद्रिय मन के नहीं, फिर तो आत्मानुभूति जो होती है मति ज्ञान आत्मसन्मुख होता है, तो उसमें तो इंद्रिय मन से समेट कर बात है। अभी अपन कर रहे हैं इंद्रियों को मन के माध्यम से जो मति ज्ञान का बहिर्मुख प्रयोग होता है उनसे उस बुद्धि को समेट कर आत्मा में लगाए, तो आत्मा में तो इंद्रियों मन के माध्यम से नहीं लगती है, ऐसा अर्थ हो गया ना। और ये तो पर को जानने के काम आती है, मैंने लिखा ना पर को जानने के काम आती इंद्रियां, तो मति ज्ञान इंद्रियों और मन के बिना भी मति ज्ञान कायम रहता है कि नहीं। देवेंद्र जी बोलो, ये बात उस वक्त बहुत चर्चा चली थी जब मैंने ये परिभाषा डाली थी उसमें, क्या कि मति ज्ञान व कर्म के छह वचन से जो ज्ञान होता है वो मति ज्ञान है। और वो आपको तो इतना तो सुना होगा आपने कि प्रमाणम मकलंकस्य पूज्य पाद से लक्षणम, है ना। तो पूज्य पाद आचार्य के लक्षण ग्रंथ सही माने जाते हैं, तो उन्होंने मति ज्ञान वर्ण के छह वचन से लिखा, इंद्रिय अकेले इंद्रिय की बात नहीं लिखी है, मेन का परिभाषा बोध ही है, आप समझ गए ना। इंद्रिय मति ज्ञान वर्ण कर्म का छह वचन हो तो मति ज्ञान हो जाएगा बस, है। हाँ आप समझ गए ना, फिर विग्रह गति में मान लो इंद्रिया नहीं है तो वहां ज्ञान रहेगा मति ज्ञान के नहीं आएगा। और इसलिए मैंने जहां स्वर्ण में बहुत चर्चा हुई थी और वो परिभाषा दी, क्योंकि तो लोग वही अर्थ करते थे, और तब मैंने कहा इंद्रिया निंद्रिया निमित्तम तत्वासूत्र का सूत्र है, तो मैंने कहा इसका ये अर्थ नहीं है। आपको एक बात ख्याल में आ गई ना थोड़ा। और श्रुति ज्ञान का भी ऐसे ही है, इसमें क्या लिखा है नये, तो प्रमाण और नये दो होते हैं ना, तो प्रमाण भी तो श्रुति ज्ञान तो प्रमाण तो है ही ना। पांच प्रमाण के पांच भेद हैं ना, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, और उसके पांच भेद हैं मत ज्ञान अशुद्ध ज्ञान। तो यहां अकेला शुद्ध ज्ञान मत नए पक्ष को लिया और शुद्ध ज्ञान के प्रमाण के अंश को छोड़ दिया, इसलिए पूरे दोनों नहीं लिए। तक समझ आए ना अभी है, जिनसे समेटना है उनको लिया, अनुभव प्रमाण प्रमाण को तो लाना है भाई साहब, अनुभव तो प्रमाण है ना, नए विकल्पों में उलझी हुई बुद्धियों को उनमें से समेट कर आत्मा के सन्मुख करना है, और जब वो आत्मा के सन्मुख होगी तो वो श्रुत ज्ञान आत्मा के सन्मुख होगा ना, तो नए रूप श्रुत ज्ञान तो है नहीं, तो वो श्रुत ज्ञान प्रमाण रूप ही तो होगा। आगे ना ख्याल में ऐसे ही मति ज्ञान माने वो इंद्रियों मन के निमित्त से होने वाला जो मति ज्ञान है उसके अलावा मति ज्ञान है नहीं, तर वो वहां से हटा के फिर क्या बचा जो इसे यहां लगाया, यदि कुछ नहीं बचाया तो आत्मा में लगाए क्या। माने इंद्रियों और मन से समेट लिया और नए विकल्पों में से समेट लिया, फिर भी मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान बचे रहे कि नहीं बचे रहे कि पूरे ही खत्म हो गए। अरे पूरे ही बचे रहे है ना, और उनको तो आत्मा में लगाया तब तो सम्मेलन सम्य ज्ञान हुआ, ख्याल में है ना, ठीक है। लेकिन पहले उनने शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से लिया, पहले अभी मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, तो शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से लिया उसका क्या अर्थ है, बोलो रमेश। कि इस शास्त्रों को पढ़कर गुरुमुख से सुन, दोनों ही शुद्ध ज्ञान है, आप जानते हो कि इस शास्त्र इसको तो शुद्ध बोलते ना द्वादशांग शुद्ध, तो इनको पढ़कर हुआ वो भी शुद्ध ज्ञान हुआ। और ऐसा भी व्याख्या है उसकी कि इस श्रोत्र इंद्री के द्वारा जो ज्ञान हुआ, सुनकर जो ज्ञान हुआ उसका नाम भी श्रुत ज्ञान है, देख कर नहीं सुनकर, तो पढ़कर तो देख के पढ़ा तो देख के जाता है, पढ़ा तो देख के जाता है, तो सुनकर, तो इस सुनकर क्या चक्कर है, ये उस जीव को पंचेंद्री सैनी होना चाहिए, पांचवी इंद्री पकड़ी ना, पांचवी की इंद्री के प्रयोग से, तो उससे कम ज्ञान चार इंद्री को नहीं होगा, देख तो चार इंद्री वाला भी सकता है लेकिन उसे आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। तो श्रुत ज्ञान के दो अर्थ हो गए, बोलो क्या हुआ, तो तुम्हारी एक सुनकर हुआ जो ज्ञान है, ये भले ही मिथ्या शुद्ध ज्ञान हो कौन सा कि हम भारल हैं हमारे पिताजी ने हमें बताया था, लेकिन ये भी श्रुत ही ज्ञान है ना। फूलचंद जी ऐसा बोलते थे कि जब 11 अंग 14 पूर्व है ना, तो पूर्व का नाम पूर्व नहीं है अकेला, ये तो अपन अधूरा बोलते हैं, जैसे रमेश कुमार को रमेश बोलते हैं अकेला, तो इसका पूरा नाम क्या है, पूर्व श्रुत है ना, क्या नाम है पूरा, पूर्व श्रुत माने पहले सुना था, माने पूर्वजों से सुनते आए, धर्म पूर्वजों से सुनते आए, इसलिए इसका नाम श्रुत ज्ञान है। और आगम ये भगवान अरहंत की वाणी से चला आया इसलिए आगम कहते हैं। और अंग अंग पूर्व है ना, कि ये द्वादशांग द्वाद जो पूरा श्रुत ज्ञान है उसका एक अंग है, पार्ट है, ये पूरा नहीं है, ये उसका एक पार्ट है, इसलिए अंग है। जो आचार का वर्णन करता है ऐसा श्रुत ज्ञान का अंश, उसका नाम आचारांग, समझ गया। अब ये कह रहे हैं कि पूर्व श्रुत तो इमनस कान से सुनकर, तो यहां सुनने को महत्व आ गया ना, पढ़ने को नहीं आया। और दौलत राम ने भी लिखा दौले समझ सुने चित सया, ये ऐसा क्यों नहीं लिखा कि दोले समझ पड़े चित सयाने, पढ़ लिख सकते थे ना सुन की जगह। तो इसलिए में से कुछ लोग ऐसा अर्थ निकालते हैं कि सुनने से ही देशना लब्धि होती है, पढ़ने से नहीं होती है। आप समझे ना, वास्तव में तो उनकी ये जिंदा भाषा है। जिंदा भाषा समझते आप, नाटक नाटकों में जिंदा भाषा होती है, पर उपन्यासों में और कहानियों में मुर्दा भाषा होती है। भाषा भी दो तरह की होती है। जिंदा भाषा क्या है, जैसे आपस में हम बोलते हैं ना, ये जिंदा भाषा है। नाटक में ऐसी लिखी जाती है, जैसे देखिए आपका नाम क्या है, ऐसा नाटक में कोई पूछेगा ना आपका नाम क्या है, तो वो जवाब देगा रमेश। और पढ़ने में हम लिखेंगे मेरा नाम रमेश है चंद फलभांझल इंदौर, ऐसा है। हम पढ़ने में ऐसा करेंगे, पूरा लिखेंगे और उसमें अकेला रमेश, न करता है न कर्म है न क्रिया है कुछ नहीं, बस अकेला इतना ही बोलेंगे। ऐसा नहीं ना, जिंदा भाषा एकदम जो बिल्कुल एकदम बोली जाती है, नाटकों में ऐसी भाषा होती है ना, जीवंत जिसे बोलते ना जीवंत भाषा। तो ऐसी वो उन्होंने जैसे वे प्रवचन कर रहे हैं, कहें सीख गुरु करुणाधार, कह रहे ना गुरु जी कहते हैं और तू सुन, तो कहने के साथ तो सुन नहीं हो सकता है। यदि पढ़ लिखते तो लिखना होता, लिखे गुरु ऐसा होता तो लिख तो रहे दौलत राम जी, गुरु जी कहां लिख रहे, गुरु जी दौलत राम जी थोड़ी है। नहीं आया समझ में, क्या क्या चल रहा, बोल बोल तुम बोल सर्वज्ञ, समझ में आया सर्वज्ञ के अल्पज्ञात पता चल जाएगा। ऊपर से कहते जा रहे हैं ना क्या कि कहें सीख गुरु करुणाधार, करुणाधर के गुरु जी ये कह रहे हैं और ताई सुन, तू उसको सुन। तो ये नहीं कह रहे कि मैं कह रहा हूं कि मैं लिख रहा हूं और तू पढ़, वो तो कहते गुरु जी ने, मैं तो वो लिख रहा हूं कि गुरु जी ने कहा था। गौतम स्वामी कहे हैं कि हे सैनिक, है ना, क्या समझ गए ना, गौतम स्वामी लिखे हैं नहीं कहा, समझ गए आप। यानी वो सुन शब्द वो गुरु जी की अपेक्षा रखता है, क्यों कि वे ऐसा कहते हैं ऐसा वो कह रहे, यदि पढ़ते कहते लिखते कहते तो पेज नंबर बताना पड़ता। नहीं ऐसा क्या, अपन जब रिसर्च करते हैं ना पीएचडी मेजी कर रहे हैं ना, करोगे बेटा तो पता लगेगा कि वो ये कहते हैं कि जी फलाने ऐसा कहा, तो वो कहते कहां कहां बताओ, पेज नंबर बताओ, किताब बताओ, कौन से ऑडिशन में कहो, सब लिखो। और फिर कहो हमारे गुरु जी ऐसा कहा करते थे, समझे ना, अब कोई पेज नंबर बताने की जरूरत नहीं। स्वामी जी ने मुझसे कहा, अभी फिर बस बताने की जरूरत नहीं है, मैंने जो बोल दिया बस मैं कह रहा हूं, वो पेज नंबर बताने की जरूरत नहीं है। माने उसमें से कैसा कैसा अर्थ निकाल लेते हैं। माने मैं कहना चाहता हूं उनके सुन शब्द में से सुनना अर्थ निकालो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन पढ़ना नहीं, पढ़ने को नहीं मानते ऐसा अर्थ निकालना ये कुछ ओवर वाइजनेस है, गुजराती का डेढ़ दाहियापन है। ख्याल में आगे ना क्या कहना चाहता हूं भाई, ये कहो ना कि उनमें सुनने की मुख्यता है। देखो सुनने में बहुत महत्व है पढ़ने से, क्या महत्व है, मैंने अपनी किताब में लिखा है कि पढ़ने आपको, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं तो अकेले जवान से ही नहीं बोल रहा हूं, हाथों से चेहरे के निशान से आंखों से सबसे बोल रहा हूं ना, तो उससे ग्रास्पिंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन यही बात जो मैं लिख दूं इसे आप पढ़ेंगे फिर मेरे चेहरे के हाव-भाव नहीं देखेंगे तो आपको उतने समझ में नहीं आएंगे। आप जानते हैं कि जब किसी का व्याख्यान सुन रहे होते हो, कोई बीच में आड़ आ जा दिखे नहीं, तो आप तो सुन रहे ना, तो उसे हटाते हो, नहीं नहीं हट जाते मुझे क्यों देख में, अरे भाई प्रवचन हो रहा है तुम सुनने को आए हो, कहां आया काय के लिए आए कि प्रवचन सुनने, लेकिन नहीं देखने भी है, क्यों अकेले कानों से सुना नहीं आंखों से सुनने की भी बात है कुछ। और इसके लिए मैं पहले बहुत उदाहरण दिया करता था, नेक कही बेन ने अनेक कही नैननी और रही सही सो कह दिनी हित कीन सो। सुनिए तुम लोगों ने कभी ऐसा है कि श्री कृष्ण ने गोपियों को छोड़कर और राजनीति करने मथुरा आ गए थे। मथुरा उस वक्त की राजधानी थी तो पॉलिटिक्स का केंद्र थी, तो वे बहुत बड़े ग्रेट पॉलिटिशियन थे, तो वे मथुरा आ गए थे और गोपियों को छोड़ आए थे। बचपन में उनके साथ बहुत खेले खुए खाए थे, कूदे थे, तो वे गोपियां उन्हें बहुत याद करती थी, उन्हें भी बहुत याद आती थी उनकी। तो उन्होंने अपने एक दोस्त थे जिनका नाम था उद्धव, नाम सुनो उद्धव, तो उद्धव से ज्ञान मार्गी माने निश्चय नए वाले, और गोपियां थी भक्ति मार्गी माने व्यवहार नए वाली, और ये बैलेंस वाले ज्ञानी जीव थे। तो इनका उद्देश्य था कि इस उद्धव को भेजो, सुनो, और वो कहो कि तुम गोपियों को समझा दो जाकर के भाई तुम ये क्या, तुम श्री कृष्ण के व्यक्तिगत प्रेम में उलझी हो, ये कोई रास्ता नहीं है, अपने आत्मा की आराधना करो, ज्ञान ध्यान करो, उससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी दुखों से, ये तुम जाके उन्हें समझाओ। और उनका अंदर में उद्देश्य था कि ये उन्हें समझाएंगे तो थोड़ी बहुत उनकी भी समझ में आएगी, और जब वो इन्हें समझाएंगी और जब वे व्यवहार का मजबूत पक्ष देखेंगे तो थोड़ी अकल इन्हें भी आएगी, डबल उद्देश्य था। हाँ, तो उनने उन्हें भेजा। अब वो उन्हें गोपियां सिर्फ उद्धव गोपियों को समझाते हैं और गोपियां उद्धव से चर्चा करती हैं उद्धव से। तो ये एक प्रकरण है हिंदी साहित्य का, और इस पर सैकड़ों किताबें लिखी गई। एक जैसे अपने 12 भावनाएं जिसके मन में आता है वो लिख देता है, ऐसे ही जिसको मन में आया वो लिख दिया, उसे भ्रमर गीत बोलते हैं। ये भ्रमर गीत क्यों बोलते हैं मुझे पता नहीं, कितने बजे शुरू किया था थोड़ा सा देता हूं, उसे भ्रमर गीत बोलते हैं। भ्रमर गीत क्यों बोलते हैं कि वो गोपियां बहुत व्यंग करती थी उद्धव से, लेकिन उन्हें डर लगता था कि ये उस कृष्ण माने कृष्ण जी का ये साथी है, दोस्त है, तो यदि कहीं उल्टी सीधी हमारे विरुद्ध भड़काता गया तो हमारा श्री कृष्ण से झगड़ा करा देगा जी, तो डर लगता था। तो वो भौरे के बहाने, हे भौरा समझते, भौरा होता ना, वो हे भौरा तू ऐसा है, हे भौरा तू ऐसा है, तो वे श्री कृष्ण भी काले थे और भौरा भी काला होता है, तो अगर एक भौरा हमें बुद्धू बना के चला गया और तुम दूसरा भौरा आया है, रे भ्रमर। तो वो जितने गीत लिखे हैं वो सब भ्रमर गीत, भ्रमर के नाम से लिखा, भौरा इतनी कहियो जाऊ, भौरा इतनी कहियो जाऊ, इतनी जाके कह देना हे भौरा तू, इतनी जाकर कह देना श्री कृष्ण जी, कहती थी उद्धव से जैसे भौरे से कह रही हूं मेघदूत जैसा। तो वो मैं लंबाऊंगा नहीं क्योंकि समय हो गया है, तो बातें तो बहुत हैं उसमें, मैंने बहुत पढ़ा है उसे। सूरदास के कम से कम 5000 पद होंगे उस पर भ्रमर गीत में, कितने 5000। एक और बहुत रत्नाकर कवि का 100-150 पद हैं, बहुत बढ़िया। तो वो ये समझाते थे कि तुम निर्गुण की उपासना करो, वो अरूपी है, अरस है, अगंध है, ऐसा समझाते थे, समझिए ना। तो वे उनसे मजाक करते थे कि भाई कैसा आदमी है तू, अरूपी का रूप देखने को बोलता है, अरस का रस चखने को बोलता है, ये कैसे हो सकता है। वो बहुत बहुत व्यंग है उसमें, इतना गंदा गंदा माने व्यंगात्मक, श्रृंगार रस वाला गंदा नहीं, ये उसे मतलब डांटती हैं, फटकती हैं, और भौरे के नाम से उसको उद्धव को धीरे धीरे कुछ समझ में आता है, और वो उद्धव उन्हें समझाता है। आखिरकार अंत है ना, वो उन्हें समझा पाता है ना वो उन्हें समझाता है। फिर लौट के उद्धव आने लगते हैं तो कोई समाचार कहना है श्री कृष्ण से, तो हाँ कहना है, اتنا کہہ دینا اتنا کہہ دینا, ایسا کہتے ہیں کہ کچھ کہہ نہیں پاتی ہیں, کچھ آ جاتا ہے لوٹ کے تو شری کے سے پوچھتے ہیں بھائی کیا بات ہوئی بولو, اس کو تو بہت اچھا تھی, ان نے کچھ کہا ہے میرے لیے سندیش, کہ ہاں کہا ہے, تو وہاں لکھا ہے رتناکر کبھی نے کیا کہ نیک کہی بے ننی انیک کہی نیننی اور رہی سہی سو کہے دینی ہچکین سو. اب کیا ارتھ ہے اس کا کہ بانی سے تو اتنا ہی کہا تھا کہ اتنا کہہ دینا اور بعد میں ایک دم آنکھوں میں سے آنسو ٹپکنے لگ گئے تو کچھ بول ہی نہیں پائیں اور بولنے کی کوشش کری تو گلا رند گیا. اب کیا بتائیں میں تم کیا کہا تھا ان نے, کیا کہا یہ کہ سمجھے نا, نیک کہی بے ننی, نیک میں تھوڑا سا بانی سے کہا اور انیک کہی نینن لیکن آنکھوں سے بہت کچھ کہا اور رہی سہی سوہو کہنی ہچکین سو ہچکی آئیں. وہ کہہ رہا سمجھ گیا میں سمجھ گیا سمجھ گیا, مانے وہ اتنی دکھی ہیں تمہارے بیوگ میں کہ اتنا کہا کہ آنکھوں سے آنکھوں کی برسا ہو گئی تو اپنا دکھ پرگٹ کیا نا, مانے بیچاری روتی رہتی ہیں تمہارے پیچھے اور پھر ہچکیاں بن گئیں بولی نہیں پاتی ہیں, یہ دسا ہو رہی ہے. بولے آپ رہنے تو رہنے میں سمجھ گیا تھا نا. تو ایسا ہر وقت نیکو کہے بینن انیکو کہے نیننی اور رہی سہی سوہو کہے دیتا ہے تکین, اپنے ان ایکشن سے کہتا ہے. تو اس لیے آپ کو پرجن اکیلا سننے کی چیز نہیں ہے, دیکھنے کی بھی چیز ہے. اور اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ نہیں نہیں تیرا چہرہ ادھر کر, میں ان کا چہرہ نہیں دیکھتا ہے, مجھے چہرہ دکھنا چاہیے, بولتے کہ نہیں بولتے ہیں. اس لیے پڑھنے سے سننے کا بہت زیادہ مہتو ہے لیکن بہت بڑی درلبھتا ہے نا. اب اپنے اتنی کتاب لکھ دی, ابھی اب 14,000 پیج ہو گئے مولے, اور جو وہ ہے نا سنپادت وہ الگ ہے. تو تمہیں 14,000 روپئے تو 24 گھنٹے میں اپلبدھ ہیں, تمہارے کمرے میں ہی اپلبدھ نہیں ہے تو ہو سکتے ہیں, تم چاہو تو میں بول دوں ان لوگوں سے تم کو فری دے دیں.